ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनिरुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवतम स्कंद चौथा अध्याय 28वां और अध्याय का शीर्षक है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और श्लोक संख्या 5। तस्यां प्रपिड्डमानायां अभिमानी पुरंजनः अवापोरु विदास्तापान् कुटुंबी ममताकुलः। तस्यां प्रपिड्यमानायां अभिमानी पुरंजनः अवापोरु विदास्तापान् कुटुंबी ममताकुलः। तस्यां प्रपिड्यमानायां अभिमानी पुरंजनः अवापोरु विधांस्तापान् कुटुंबी ममताकुलः। तस्यां उस नगरी के प्रपीड्यमानायां विभिन्न कष्टों में पड़कर अभिमानी अत्यधिक लिप्त पुरंजनः राजा पुरंजन ने अवाप प्राप्त किया। पुरु अनेक विधान प्रकार के तापान क्लेश कुटुंबी परिवार वाले ममता आकुलः परिवार से लगा के कारण अत्यधिक व्यग्र। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब इस प्रकार वे नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवन राज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गया। तात्पर्य इस प्रकार है, जब हम शरीर का उल्लेख करते हैं तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर के विविध अंग मन बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित होते हैं। वृद्धावस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं जिससे अनेक रोग आ घेरते हैं। शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम न कर सकने कारण अत्यंत दुखी होता है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी या क्षेत्रज्ञ है और यह शरीर कर्मभूमि या क्षेत्र है। जब खेत में तरह तरह के झाड़ झंखाड़ उग आते हैं तो खेत के स्वामी के लिए कार्य कर पाना कठिन हो जाता है। यही स्थिति आत्मा की हो जाती है जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है। शरीर के ठीक से काम न करने तथा चिंता के कारण शरीर पर अतिरिक्त भार लदता रहता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। వందేహం శ్రీ గురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగరజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ హే కృష్ణ కరుణాసింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేష్ గోపికాకాంత రాధాకాంతరమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతి దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే నమ మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌర్తిషే నమః వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః నమామి విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దిశతారిణే జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ముఖం కరోతి వాచాలం పంగం లంఘయతి గిరిమి యత్కృపాతమహమందే శ్రీగురుం దీనతారిణం పరమానందమాధం శ్రీ చైతన్యమీశ్వరం. హరే కృష్ణ. తో ఇస్ ప్రవచన కో ప్రారంభ కరనే సే పహలే మే సభీ ఉపస్థిత వైష్ణవ్ కి కృపా కి యాచనా కర దూ జిస్కే ద్వారా ఇస్ శ్లోక పర్ మే కుచ్ వివరణ కర్ సకూ. తో యే శ్లోక హమ్ జైసే దేఖ రహే కి నారద ముని एक पुरंजन उपाख्यान बता रहे राजा प्राचीन भविष्यत को, क्योंकि राजा के पास जब पहली बार गए ऐसे तो ये तो 28वां अध्याय चल रहा है, लेकिन एक दो तीन अध्याय पहले जब नारद मुनि पहली बार मिले थे राजा प्राचीन भविष्यत को, और नारद मुनि ने सुन रखा था कि जो राजा है, राजा का तो ऐसे जन के या लोगों के कल्याण के लिए कुछ कार्य करना चाहिए जिसमें स्वयं का भी कल्याण हो जाए, स्वयं का भी हित हो जाए और प्रजा का भी हित हो जाए, ये उद्देश्य उनका था ऐसे नारद मुनि सोच. लेकिन नारद मुनि ने जैसे देखा ये जो राजा है, राजा केवल सकाम कर्मों में लिप्त है और केवल क्या हो रहा है, पशुओं की हिंसा बहुत हो रही है लेकिन उसे किसी की शांति प्राप्त नहीं हो रही है, और जीवन का वास्तविक उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति वो भी नहीं हो रहा है, साध्य नहीं हो रहा है. तो नारद मुनि पहुँच गए वहाँ पर, क्योंकि नारद मुनि दुनिया के सबसे बड़े प्रचारक है. जैसे कल हम परमपूज राधारमण स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुन रहे थे, इंग्लिश में बता रहे थे कि नारद मुनि विश्व के सबसे बड़े प्रचारक है, हर समय प्रचार करेंगे और कोई एक विशिष्ट स्थान है, हर नरक में भी जाके प्रचार करेंगे, कहीं भी जा सकते हैं, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन लेटर वगैरह कुछ हमारा जोन वो जोन ऐसे कुछ नहीं, कहीं भी जा सकते हो क्योंकि हमें दिखते नहीं, और जहाँ जिसको प्रचार करने जाते हैं उनको तो दिखते हैं वो, और वहाँ प्रचार करते हैं नारद मुनि. तो इस बार हम देख रहे हैं कि नारद मुनि वहाँ पहुँचे जहाँ पर कौन रहते थे, राजा प्राचीन भविष्यत, और जिनके जो पुत्र थे वो पुत्र तो तपस्या के लिए गए थे, शिव जी का दर्शन हुआ, शिव जी ने कुछ मंत्र बताया, वो तो आपने सुना ही है. नारद मुनि वहाँ जाते और पूछते हैं उनसे कि आप हे राजन, आप मुझे बताइए, आप जो सब कुछ कर रहे हैं, सकाम कर रहे, सब कर रहे हैं, ये करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या, आप क्यों कर रहे हो, ये करने के बाद आपको क्या प्राप्त होने वाला है. ऐसे जब नारद मुनि ने पूछा तो राजा प्राचीन भविष्य के पास कुछ ठोस उत्तर नहीं था. उन्होंने कहा यह बात सही कि आपका प्रश्न मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये करने का उद्देश्य क्या, ये मैं भी नहीं समझ सकता हूं, मुझे ही पता नहीं कि हम कर रहे हैं और पता ही नहीं. तो नारद मुनि कहते हैं उनको कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ऐसे है कि मतलब हम ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें दुख से छुटकारा हो जाए और हमें सुख की प्राप्ति हो, लेकिन क्या आप जो कर रहे हैं उससे आप दोनों कार्य संपन्न हो रहे हैं. ओके नारा राजा प्रश्न नहीं नहीं ऐसे तो नहीं लग रहा है, कुछ आप जो बता रहे ऐसे नहीं हो रहा है. तो नारद ने तुरंत क्या किया, आकाश में आसमान में जिन जिन प्राणियों की हत्या की थी राजा प्राचीन परिषद ने, उन सभी प्राणियों को क्या किया, उन्होंने दिखाया अपने योग शक्ति के प्रभाव से. हम ऐसा नहीं कर सकते, कहीं प्रचार के लिए जाएंगे हम बोल नहीं सकते देखो उधर है, अरे मुझे नहीं दिख रहे, वो सबको नहीं दिखाई देता हमको दिखाई दे रहा है, ऐसे कहेंगे तो प्रचार पूरा नहीं होगा. नारद मुनि में एक क्षमता थी, नारद मुनि उन राजा को दिखा भी सकते थे और सभी प्राणी को देख रहे थे नारद, वो राजा भी, और एक एक करके जिन जिन की हत्या उन्होंने की थी उन सबको राजा भी देख रहा था. और तब नारद मुनि बता रहे, देखो राजन, जिनकी हत्या तुमने की है वो सभी क्या करे, प्रतीक्षा कर रहे कि जैसे तुम मर जाओगे क्या करेंगे ये सब, हाँ छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम्हारी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब जाके जब डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, हाँ पीपीटी होता है ना आजकल, हाँ वो पीपीटी पहले से था लेकिन मशीन वगैरह नहीं होता था, लेकिन ऐसे दिखा सकते थे तब। अब तो पूरा अरेंजमेंट करो करो, बाद में दिखाई देगा पर्दे पर, और कभी मशीन में भी गड़बड़ी हो गया तो फिर बोलेंगे आज नहीं कल दिखाएंगे, लेकिन तब ऐसा नहीं होता, तुरंत दिखा दिया उन्होंने। और जैसे देखा राजा ने, समझे कि ये सचमुच मैं जो कार्य कर रहा हूँ उससे मेरी तो भलाई होगी नहीं और आने लोग प्रजा की भी कुछ नहीं होगी। फिर नारद में जैसे समझे कि अभी ये क्या गर्म है, जब तवा गर्म होता है तो क्या होता है, उस पर रोटी बना सकते हैं ना, उसी प्रकार उसको गर्म नहीं किया। आप सोचेंगे राजा प्राचीन कहाँ अग्नि में नहीं रखा, मतलब जैसे समझे नारद मुनि अभी ये सही समय है, इसको ज्ञान दे सकता हूँ मैं। तो तब बताने लगे पुरंजन की कथा, और पुरंजन मतलब कौन है कि उसकी कथा उसको बता रहे, हाँ दूसरे किसी की, जैसे जिस प्रकार यति महाराज भी देवयानी को स्वयं की अपनी कथा बता रहे और बाद में बताने ये तो अपनी कथा है, उसी प्रकार पुरंजन की कथा, मतलब पुरंजन मतलब कौन है, हम सभी पुरंजन ही तो है, हाँ पुरंजन ही, पुरंजनी नहीं, पुरंजनी बाद में बनेंगे, हाँ हम सब पुरंजन है। पुरंजन मतलब कौन, जो पूर्व में रहने वाला वो पुरंजन है। पहले राजा को पता नहीं था कि मेरे बारे में बता रहे, लेकिन बाद में जब नारद मुनि की ऐसी मतलब एक खासियत है, और विशेष रूप से नारद मुनि के हृदय में जो करुणा है जीवों के प्रति, उस करुणा के कारण नारद मुनि कहीं पर भी जाकर क्या कर सकते हैं, ये जो विशेष कार्य प्रचार का कर सकते हैं जीवों पर विशेष कृपा बरसाने के उद्देश्य से। तो बता रहे कि आप पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, वो सब आपने तो सुना ही है, लेकिन इस अध्याय में ये बताया जा रहा है कि इस अध्याय में राजा पुरंजन की नगरी पर नहीं, अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति, लेकिन अभी बाद में होने वाली, लेकिन उसके पहले क्या हो रहा है, यहां पर हमला हो रहा है। हमला करने वाले कौन है, सैनिकों ने हमला किया है, और ये सैनिक कौन है, पुरंजन की नगरी पर हमला करने वाले सैनिक मतलब ये सभी कौन है, ये बीमारियां है, व्याधि से ग्रस्त हो गए पुरंजन। और ये काल कन्या कौन है, ये काल कन्या वृद्धावस्था, जरा बुढ़ापे ने आक्रमण किया ये पहले से, और बाद में साथ साथ वृद्धा बीमारी भी आ गई है, और फिर क्या आने वाला है बाद में, ये दो आने के बाद नेक्स्ट नंबर होता ही है कौन सा, मृत्यु तो होता ही है, और जन्म तो पहले हो ही चुका है, हाँ चार चीजें देखने को मिल रही यहां पर एक ही साथ। मतलब यहां पर ऐसे वर्णन आ रहा है कि जब जो काल कन्या है, पहले तो उसने नारद मुनि के पास गई थी काल कन्या, कहा कि मेरा स्वीकार कीजिए आप, तो काल कन्या तो वृद्धावस्था जरा है, तो नारद मुनि तो हर समय उनके उनके ऊपर तो काल कन्या का वृद्धावस्था का प्रभाव कभी होता भी नहीं, ऐसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन पर कभी भी वृद्धावस्था या काल कन्या का प्रभाव नहीं होता है। हाँ लग सकता बाह्य रूप से, शुद्ध भक्त भी बाह्य रूप से लग सकता कि बूढ़े हो गए, लेकिन उनका बुढ़ापा भक्ति में हाँ रुकावट डालने वाला नहीं होता है, उनका बुढ़ापा उनको भक्ति में क्या करता है, और ज्यादा टेस्ट देने वाला होता है, ज्यादा रुचि प्रदान करने वाला है उनको वो बुढ़ापा। लेकिन जो भक्त नहीं, जैसे यवनराज की बात हो रही यहां पर, जो यवनराज मतलब कौन है, यवन या म्लेच्छ का अर्थ है, जो वैदिक नियमों का पालन नहीं करते सुचारू रूप से, वो है यवन, हो सकता है भारत में भी हो, विश्व से लगता है ना यवन मतलब दूसरे देश में रहते हैं, नहीं हाँ तात्पर्य प्रोपा जी वर्णन करते कि यवन मतलब ये जरूर नहीं कि दूसरे देश में रह रहे, वो यहां भी हो सकते हैं भारत में भी, जो वैदिक नियमों का पालन नहीं कर रहे वो सभी यवन या म्लेच्छ है। तो यहां पर जो पालन नहीं कर रहे वैदिक नियमों का, उन पर काल करने का प्रभाव बहुत जल्दी से फटाफट हो जाता है, हाँ। और जब प्रभाव होता है तो पता, एक बार ऐसे हुआ, एक कहानी ऐसे है कि एक बार आपने तो सुना ही होगा, एक बार ऐसे हुआ कि एक जज था, जज पता है ना, जज जो जजमेंट करने वाले जज, और फिर जज था एक, और उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात जज कहां पहुंच गए, यमलोक में पहुंच गए, यमराज के सामने जैसे ही जज पहुंच गए, न्यायाधीश या न्यायमूर्ति पहुंच गए, तो न्यायाधीश जैसे देखा जज को देखा, यमराज जी को देखा, और न्यायाधीश ने कहा कि मिलॉर्ड ये क्या बात है, आपने, क्योंकि हमारे यहां पर पृथ्वी पर क्या होता है, जब किसी को बुलाया जाता है कोर्ट में तो क्या करते हैं हम, कितनी नोटिस भेजते हैं, 3, और यहां पर आपने एक भी नोटिस नहीं भेजी और आपने यहां कैसे मुझे बुलाया, मुझे मुजरिम समझकर। मैं जानता हूं ये जान बूझ कर क्या है, मेरे साथ कोई साजिश की जा रही है। तो यमराज भी हक्का पक्का रहे, नोटिस नहीं मिली आपको? नहीं 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 मिली मुझे। तुरंत किसको बुलाया उन्होंने, ये ताली बजाने का दो कारण है, एक तो चित्रगुप्त को बुलाने का, दूसरा है कि कुछ आपको पता है। तो फिर चित्रगुप्त आ गए, चित्रगुप्त मतलब जो गुप्त रूप से चित्र खींचने वाले हैं, वो चित्रगुप्त पहुंच गए वहां। चित्रगुप्त ने पूछा कि महाराज आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया है। मतलब क्या कारण है? कारण ये कि ये जज साहब तो कह रहे कि इनको एक भी नोटिस नहीं पहुंचा, कि वास्तव में इनको एक भी नोटिस नहीं पहुंचा। तब चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज मैंने नोटिस तो जरूर भेजा है, तीनों की तीनों भेजे। जज ने पूछा भेजे तो भेजे, लेकिन मेरे भेजे में क्यों नहीं आ रहा आपका नोटिस? मैं कैसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने नोटिस भेजा है? हाँ, या तो फिर जो भेज रहे उसको भेजा नहीं होगा, या फिर हाँ मुझे तो है ऐसा, सबको लगता है हमको भेजा है। तो फिर कहा कि क्या नोटिस है वो, और क्या कुरियर से भेजा था या व्हाट्सएप पे कैसे भेजा था? वो तो नहीं था तब नोटिस ऐसा। सुनिए पहली नोटिस नंबर 1, पहला नोटिस ये है। क्या पहला नोटिस? आपके जो काले काले बाल क्या हो गए, सफेद हो गए, ये पहला नोटिस था। जिसने बोला व्हाट, ये पहला नोटिस था? हाँ ये पहला नोटिस था। और आपने क्या किया, उस पहले नोटिस के कागज जो भेजा था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और मेरे दिल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए आपने। मिला था नोटिस? हाँ मिला था। और आपने क्या किया, उस नोटिस को फाड़ के आपने जो सफेद बाल थे उस पर क्या लगा दिया, हाँ आपने कोलगेट का, नहीं सॉरी वो नहीं कोलगेट का नहीं होता है ना, सॉरी दूसरा, सॉरी वो जो कुछ है वो बाद में देख लेना, तो वो लगा लिया और क्या किया, वो फाड़ दिया नोटिस। मिला था? हाँ मिला था। दूसरा नोटिस सुनिए, क्या है दूसरा नोटिस? दूसरा नोटिस, आपकी आंखों की रोशनी कम कम होने लगी। मिली थी नोटिस? हाँ ये नोटिस थी, मुझे पता ही नहीं था। हाँ नोटिस थी। और आपने क्या किया, आपने आंखों की रोशनी कम हो गई और आपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर मुझसे कॉन्टैक्ट तोड़ दिया था, और ये दूसरा नोटिस आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए, मानो मेरे दिल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। मिला था नोटिस? हाँ मिला था। सुनिए तीसरा नोटिस, तीसरा नोटिस क्या है? हाँ आपके दांत धीरे 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 गिरने लगे। हो चाहे नोटिस था तीसरा, और नहीं तो क्या, तीसरा नोटिस था। और आपने क्या किया, आप गए डेंटिस्ट के पास और आपने पूरे क्या लगा दिए, पूरे 32 के 32, पहले थे भी नहीं कभी 32, ओरिजिनल आपने डुप्लीकेट 32 लगा दिए, और मेरा तीसरा नोटिस फाड़ के मेरे हाँ दिल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उन्होंने कहा हाँ सही है, तीनों नोटिस मुझे मिले थे। कहने का अर्थ यही है, ये जो काल कन्या का जो प्रभाव है ये सबके ऊपर होता है। जरा बुढ़ापा, एक बाल क्या हो जाता है शुरुआत में, सफेद। दशरथ महाराज के साथ कैसे हुआ, एक बाल जब देखा उन्होंने शीशे में, एक बाल सफेद हो गया था, तुरंत उन्होंने श्री राम को बोला, श्री राम मैं वृद्ध हो गया हूं। उन्होंने ये नहीं कहा श्री राम वो हेयर डाई तो लेके आओ, नहीं कहा। आपने सुना है कभी रामायण ने? नहीं ना, पता नहीं, मैंने तो नहीं सुना, वाल्मीकि रामायण ने भी तो नहीं है, पता नहीं कहीं होगा, नहीं नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आपका क्या करना है मुझे, आपको राजा बनाना है मुझे, और मैं क्या करूँगा, वानप्रस्थ लेके जाऊँगा। काले कन्या का प्रभाव होता है सबके ऊपर, और फिर जो सैनिक सैनिकों का भी हमला हो जाता है व्याधि के रूप में। व्याधि मतलब क्या है, दांत, हाँ दांतों में दर्द, आँखों में दर्द, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। अभी पहले क्या होता था, हाँ एक ही डॉक्टर होता था, फैमिली डॉक्टर, हाँ होता था, एक ही डॉक्टर होता था, आंखों का हो कुछ भी होता उसी के पास सब इलाज होता था। अभी क्या है, अभी आंखों का डॉक्टर अलग, कानों का अलग, अभी बाद में क्या होगा, लेफ्ट आई के लिए अलग और राइट आई के लिए अलग। अरे आपकी ये इस आंख में बीमारी है तो आपको क्या करना चाहिए, सॉरी मैं इस आंख का डॉक्टर हूँ, आप उधर जाइए। ऐसी हालत हो रही है, अभी होने वाली है, और ज़्यादा समय नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि ये पुरंजन जो है, पुरंजन कोई अलग व्यक्ति नहीं, हम ही पुरंजन है सभी, और हम पर ये हमला, काल कन्या का भी हमला हो रहा है, और फिर सैनिकों का भी हो रहा है, और किसका हो रहा है, यवन राज भी तैयार है। हम अगर वैदिक नियमों का जो पालन है उसका पालन करने में उल्लंघन अगर करने लगे तो क्या होगा, फिर यवन राज आ जाएगा, आज का यवन राज। हाँ, और यवन राज हम पर हमला, ये सभी मिलके, हाँ मिलके आते, एक अकेले नहीं आते, हाँ सभी मिलके, व्याधि भी आ जाता है। और यहां पर बता रहे हैं जो पुरंजन है, ये क्या इधर श्लोक में बता रहे, हवा पोरु विदास्तापन कुटुंबी ममता कुलहा। ये कुटुंब परिवार के प्रति इतना लगाव, इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति होने के कारण क्या हुआ, उनको पता लगा कि अभी मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इनका क्या होगा, चिंता सताने लगी। चिंता ऐसी चीज है, चिंता क्या करती है, हर एक को जलाती है। जब जीवित रहता है तो चिंता उसको जलाती है, और मरने के बाद क्या जलाती है उसको, चिंता जलाती है। लेकिन दोनों को रोकने के लिए क्या जरूरी है, चिंतन जरूरी है, चिंतन। जब भगवान का कोई चिंतन करता है, भजन करता है, तो क्या हो जाता है, जो शोक है, मोह है, भय नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा है ना, यस्यामे श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। वह वर्णन आता है कि जब कोई भगवान के बारे में श्रवण करता है तो भगवान के प्रति भक्ति उसके हृदय में जागृत हो जाती है, और तीन चीजें उसके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। क्या है वो तीन चीजें, शोक, दूसरा है मोह, और तीसरा है भय। तीन चीजें चली जाती, क्योंकि तब इन लोगों का आक्रमण नहीं होगा, फिर वो दूर से देखेंगे, हमला करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जो भक्त होता है वो कभी डरता नहीं इन चीजों से। हाँ, क्योंकि उनको पता है ये चीजें तो आते रहते, ये तो हमला होते रहेगा, लेकिन हर समय वो सोचता है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के अंदर जो आत्मा वो मेरी असली पहचान है। यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो किसान होता है ना, किसान, किसान उसको पता है कि असली पौधा तो ये है, लेकिन उस असली पौधे के आसपास अलग अलग जब खरपतवार बढ़ जाती है तो जो सही किसान हो क्या करता है, उसको निकालता है, जिससे जो सही पौधा है वो पूर्ण रूप से जीवित रहे, फले फूले। लेकिन जिनको पता नहीं है कि वो खरपतवार निकालें तो क्या करेंगे, वो खरपतवार इतनी बढ़ जाएगी और पौधे को जब हानि होगी तो पौधा भी ठीक नहीं रहेगा, और किसान सोचेगा अरे क्या होगा, पौधा भी ठीक नहीं है। उसी को प्रभुपाद जी बताते, यहाँ पर जो क्षेत्र है शरीर, और क्षेत्र ही ठीक नहीं है तो फिर जो क्षेत्र के अंदर आत्मा है उसको भी कष्ट मिलता है। अगर आत्मा को इस कष्ट से अगर बचाने तो क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को, मतलब मैं शरीर हूँ, इस स्थिति से ऊपर लाना चाहिए। पुरंजन क्यों ज़्यादा कष्ट भुगत रहा है, क्यों ज़्यादा परेशानी झेल रहा है, इसका कारण यही है कि वो अपने आप को क्या समझ रहा है, मैं शरीर हूँ, नौ द्वारों वाला शरीर, और नौ द्वारों से क्या हो रहा है, ये सैनिक और सभी अंदर प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन जब कोई जीव समझ लेता है, अपनी स्वरूप स्थिति में पहुँचता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, इस स्वरूप स्थिति में जब कोई जीव पहुँचता है या स्थित होता है, तब उस पर कितना भी हमला हो जाए उन सैनिकों का या काल कन्या का, यवनराज का, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है ये तो आक्रमण तो होते रहेगा। वो अपने आप को उस शरीर की स्थिति में नहीं रखता, उस अपने आप को अलग रखता है। एक बार ऐसे हुआ कि कहीं एक कथा आती है पुराण में, तो एक बार भगवान श्री कृष्ण भगवान ऐसे ही एक रेगिस्तान में ऐसे टहल रहे थे, और नारद जी भी वहाँ पे आए। नारद जी ने उनको प्रणाम किया, और नारद जी ने कहा भगवान से, कहा कृष्ण, हे भगवान मैं माया का दर्शन करना चाहता हूँ, आपकी माया का दर्शन। तो भगवान ने कुछ कहा नहीं, चुप बैठे, और कुछ समय के बाद दोबारा वही प्रश्न पूछा नारद मुनि ने कि मैं माया का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने कुछ जवाब नहीं, कुछ उत्तर नहीं दिया, और इतना ही कहा नारद मुनि कुछ देर के बाद, हे नारद तुम जाओ और मेरे लिए, हाँ मैं जल पान करना चाहता हूँ, मेरे लिए जल लेके आओ। तो नारद ने कहा कि बस इतनी सी बात है, तो कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं है, क्योंकि वो रेगिस्तान था तो पानी मिलना मुश्किल था वहाँ, तो नारद मुनि के लिए वास्तव में मुश्किल ही था पानी लाना वहाँ से। तो फिर भी नारद मुनि ने सोचा कि अभी भगवान की आज्ञा है, पानी लाने के लिए कहा है, तो हो सकता है कि पानी लाने के पीछे और भी ज़्यादा कुछ कारण हो सकता, तो नारद मुनि कोई बात नहीं, भगवान ने आदेश दिया तो पालन करते हैं। तो नारद मुनि जल लाने के लिए गए, इधर उधर देखा, बहुत दूर देखा, एक छोटा सा घर था वहाँ पर, और दरवाजा तो अंदर से बंद था। तो नारद मुनि पहुँचे वहाँ, तो ऐसे बेल वगैरह नहीं होती थी पहले ज़माने में, नारमिन केवल दरवाजे पर ऐसे किया तो किसी ने दरवाजा खोला, जो घर का मालिक था, दरवाजा खोला और तुरंत इन्होंने कहा कि प्रणाम किया, उन्होंने कहा कि आइए आइए अंदर आइए, तुरंत अंदर बुला लिया, बिठाया, कहा कि आप बैठिए विराजिए। नारमिन ने कहा कि ओ मुझे पानी पानी इसके लिए, हाँ पानी मिलेगा, खाना सब मिलेगा, आप बैठिए, ये सब इंतजाम यहाँ होगा। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे जल्दी है, हाँ जल्दी तो सबको जल्दी है, हमको भी जल्दी है, तो कोई बात नहीं आप विराजिए, आपको मिलेगा जल। और कुछ देर के बाद ऐसे होने लगा कि वो जो घर का जो मालिक था उसने क्या किया, अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि अजय सुनती हो, वो आ गई पत्नी, बोले क्या बात है, देखो मिलो इनसे। तो नारमिन से कहते कहा उस व्यक्ति ने कि ये मेरी पत्नी है। तो नारमिन ने कहा ठीक है नमस्ते, बाद में कहा कि ये मेरा पुत्र है, उसको भी प्रणाम किया, बाद में हाँ अपनी पुत्री को बुलाया, कहा कि ये मेरी कन्या है, पुत्री है ये। तो नारमिन सोच में पड़ गई ये क्या हो रहा है, ऐसा भी इंट्रोडक्शन क्यों हो रहा है मेरे साथ ही, हाँ आईडी प्रूफ के साथ, वो भी हाँ आधार कार्ड नहीं होता था तब तो, कहा ये सब क्या हो रहा है। तो वो जो वो पुत्री के पिता कह रहे कि ये जो मेरी पुत्री है बहुत अच्छी है, अच्छा खाना पका सकती, ये बना सकती है, वो बना सकती, कचौड़ी, वो जो जो कुछ है आइटम्स, लिस्ट तो आपके पास होगा, बाद में देख सकते हो, वो सब बना सकती है। नारम ने पूछा ये मुझे क्यों बता रहे सब, मैं तो पानी के लाया था। तो उन्होंने कहा दरअसल बात ऐसी है कि कल ही हम एक ज्योतिष के पास गए थे, उन्होंने कहा कि मैंने उनको बताया कि मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप कल क्या करना, कल जैसे पहला व्यक्ति जो कोई आएगा आपके घर में वही आपका दामाद होगा, और आप पहले आप ही आए हो, हाँ और तब तो पहले आप करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि वही आए थे अकेले। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे झंझट में पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो आई एम ब्रह्मचारी, ऐसे वही करने लगे। उन्होंने कहा नहीं देखिए प्लीज़ मान भी लीजिए ना, क्योंकि मेरी पुत्री इतनी सुंदर है और आप ही ऐसे व्यक्ति, आप ही कम सुंदर नहीं हो, और आप दोनों अगर साथ में रहोगे तो बस मैं खुशी से आंखें क्या कर सकता, बंद कर सकता हूँ। नारमिन बहुत मना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं बस आपको मना नहीं करना है अभी। नारमिन बस स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर बाद में उनका तो घर नहीं था नारमिन का, कुछ वहीं रहने लगे, वहीं पे रह के फिर उस पुत्री के साथ विवाह भी हुआ, वहीं रहने लगे। और कुछ समय के बाद जो नारमिन के जो सास ससुर जो थे, एक दिन क्या हुआ कि हाँ जैसे जरा का प्रभाव हो गया, फिर वृद्धावस्था के कारण उनकी मृत्यु हो गई, और नारद मुनि उनकी पत्नी और उनका परिवार रहने लगा उस घर में। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, ऐसे बहुत साल बीतने के बाद एक समय ऐसा आया कि जोरों से वहाँ पर तूफान, इतना तूफान जोर से था कि उस तूफान कारण उस घर के ऊपर जो छत था, छत उड़ गया और जोरों से वर्षा होने लगी, इतने जोरों से तेज वर्षा होने लगी। उस वर्षा के कारण क्या हो गया, एक तो छत उड़ गया था और क्या हुआ, बारिश, एक तो रेगिस्तान में बारिश गिरता होता नहीं एक तो, और हुआ तो फिर रोकना मुश्किल होता है बहुत। तो इतने जोरों से बारिश होने लगी और इतना घर में पानी भी आ गए, पानी भी बढ़ने लगा घर में, और फिर सोचने लगे अभी क्या होगा, और उनके घर में जो आलमीरा था ये था वो सब बहके जाने लगा, और नारों में देख रहे थे अभी कैसे बचाए, क्या करें हम, और देखते हो गया उनका जो पुत्र था नारमुनि का पुत्र, वो भी बहते बहने लगा, कोई पुकारने लगे और कोई है बचाओ, अरे देखो मेरा पुत्र जा रहा है, कोई नहीं था बचाने के लिए। बाद में उनकी पुत्री भी जाने लगी बहते हुए, उनको भी कोई बचाने के लिए नहीं था, और उनकी जो पत्नी थी वो भी बहके जाने लगी। और नारमुनि अब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाँ कुटुंबी हाँ जो ममता कुलहा, इसलिए वो भी पुकारने लगे कोई है बचाओ, अरे देखो मेरी पत्नी बहके जा रही है, बहके जाने के बाद भी कभी दुख होता है, लेकिन ये तो बहके जा रही है, हाँ तो बहते हुए जा रही है, कोई है बचाओ, और कोई कौन था ही नहीं वहाँ बचाने के लिए। तो बहके जाने लगी और नारमुनि इतने दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, एक बहुत बड़ा वृक्ष था वो भी बहके जाने लगे, लेकिन बहुत बड़ा वृक्ष था, वृक्ष को पकड़ लिया और बस नीचे से बहुत दुख के कारण, हाँ जब बहुत दुख शोक होता तो क्या होता है, अपने बहुत प्रिय व्यक्ति जब चले जाते तो क्या करते हम, उसको कहते शोक, दुखी, लेकिन वो उसको कहते हैं शोक, बहुत शोक होने लगा नारद मुनि को। और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उस शोक को, और क्या किया उन्होंने फिर, हाँ ऐसे जो वृक्ष को ऐसे बहुत जोरों से पकड़ के रखा था और धीरे धीरे से उनको ऐसे महसूस हुआ कि अभी पानी पानी जा चुका है, बारिश भी रुक गई, पानी भी जा चुका है, और धीरे 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 से बहुत ही दुख के कारण आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सोचा कि आंखें खोलने के बाद क्या देखूंगा मैं, सब उजड़ा हुआ घर, घर में कोई नहीं, ऐसे देखूंगा मैं, ऐसे सोच रहे थे। और आंखें जैसे खोली उन्होंने, नजर तो नीचे ही थी, और जैसे देखा तो क्या देखा उन्होंने, कुछ प्रकाश, कुछ तेज आ रहा था, तेज दिख रहा था वहां पर, और तेज के कारण उनकी आंखें चकाचौंध हो गई, और देखा अरे तेज आ रहा है यहां पर, और सुंदर सुंदर नाखून, नाखून थे, नाखूनों से तेज आ रहा था प्रकाश, और जो नाखून भी कुछ नेल पॉलिश नहीं लगाया था वहां पर, हाँ वो कुदरती, हाँ गुलाबी रंग था उनका, बहुत सुंदर लालिमा थी उन नाखूनों पर, और तेज भी प्रकट हो रहा था। और थोड़ा सा ऊपर देखा तो क्या देखा उन्होंने, बहुत सुंदर पायल भी देखे, और ऊपर देखा तो क्या देखा, पीताम्बर देखा, और ऊपर देखा तो वैजयंती माला देखी, और ऊपर देखा क्या देखा, कौस्तुभ मणि देखा, और ऊपर देखा बहुत सुंदर लाल होंठ देखे, और कृष्ण बांसुरी बजा रहे, कहा कि नारद पानी, मैं पानी चाहता था और तुम कहाँ कहाँ गए। नारद ने कहा सॉरी, सॉरी नहीं कहा, सॉरी नहीं कहा, सॉरी, उन्होंने कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और बस ऐसे ही हाँ सब उनके बहकावे में आ गया, और बहकावे में आ गया कि सब बह गए, और मैं ही हाँ मैं बच गया। तो भगवान ने कहा हे नारद, तुम चाहते थे ना माया का दर्शन करने करना चाहते थे ना, यही तो है माया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। ये तीन गुण वाली माया बहुत चलाक है, इसको तरना मुश्किल है, लेकिन जो कोई मेरी शरण में आता है उसको, उसके लिए बहुत इजी है, बहुत आसान है तरना, माया को पार करना। नारद मुनि ने कहा बेफिक्र रहो, ये जो हुआ घटित हुआ है, कुछ नहीं हुआ ऐसे आपके साथ, ऐसे मैंने क्या किया आपको ऐसे दिखा दिया, हाँ लेकिन नारद मुनि ऐसे फंसने वाले नहीं किसी चीज में। तो इसे हमने जो छोटी सी कथा बताई, इसे हम समझ सकते हैं कि जो भौतिक जगत में जो आसक्ति, यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है ममता कुलाहा, इस आसक्ति के कारण ही हर समय लगता है आसक्ति थी, आसक्ति मतलब आसक्ति थी, हाँ समझ रहे ना मीनिंग, लगता है कि वो आसक्ति थी, हाँ परिवार चलाने वाली कोई, एक चलाने वाला एक चलाने वाले दोनों होते ना, हाँ लगता है हर समय ये मुझे बचाएगा, वो बचाएगा, वो बचाएगा, बच्चा मुझे बचाएगा, हाँ लेकिन कोई बचा था नहीं, डॉक्टर भी नहीं। इसे जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाँ उनकी मृत्यु होने के बाद उन्होंने क्या किया, हाथ कैसे छोड़े थे, हाथ ऐसे कुछ भी नहीं था, और उन्होंने जो कमाई की थी, जो जेवरात वगैरह सब उन्होंने बिखेर दिए, उस पर उनका डेड बॉडी था, किसी ने पूछा ऐसे क्यों, तो उन्होंने कहा कि पहले ही बता दिया था ऐसे, उन्होंने कहा कि मुझे पता लग गया है कि कोई भी डॉक्टर मुझे मृत्यु से नहीं बचा सकते, और मुझे और मैं जो इतना मैंने सोचा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, पूरे दुनिया को हाँ कर लो दुनिया मुट्ठी में, हाँ ऐसे मैं सोच रहा था कि दुनिया को मुट्ठी में करूँगा, लेकिन मैं समझ लिया हूँ मैं कि ये मेरे लिए संभव नहीं है, जो जो मैंने प्राप्त किया है यहीं पे छोड़ के जाना है, डॉक्टर भी नहीं बचा सकते, और जो मेरे संबंधी है जो मेरे मित्र थे वो भी मुझे नहीं बचा सकते, मुझे जैसे आया हूँ वैसे ही जाना है। लेकिन भक्तों के जीवन में ऐसे नहीं, तो भक्त क्या करते हैं जैसे आए वैसे नहीं जाते, हो सकता है ऐसे खाली आता है लेकिन जाते समय क्या लेके जाते हैं, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति। क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु ज्ञानम वैराग्यम च यद हैतुकम। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको अलग से वैराग्य का अभ्यास नहीं करना होता है, भक्ति कारण ज्ञान भी मिलता है, और परिवार में होते हुए भी किस प्रकार उनसे अलिप्त रहना, इस प्रकार का वैराग्य भी उनको प्राप्त होता है। जैसे भगवान बताते ना पद्म पत्र मीमां भसा, जो कमल होता है ना लोटस फ्लावर, अगर पानी में रहने के बावजूद भी पानी का स्पर्श नहीं होता, ऐसे नहीं करते हम कमल का फूल लेके आए उसको ऐसे निचोड़ के बाद में हम पानी निकल गया फिर बाद में हम भगवान को अर्पण करें, ऐसे जरूर नहीं होता है। कमल का फूल ले लिया बस पानी तो कभी स्पर्श नहीं करता उसको। उसी प्रकार हम जो भक्तियों का अभ्यास अगर गंभीरता से करेंगे, भक्तियों को अगर जीवन में उतारेंगे, तो क्या होगा, काल करने का प्रभाव भी नहीं होगा और सैनिकों का हमला भी नहीं होगा और यवन राज भी टेढ़ी नज़र से हमारी ओर देखेगा नहीं कभी, क्योंकि भगवान की जो शुद्ध भक्ति करते हैं उन तक ये लोग पहुंचते भी नहीं, ये चीज़ें आती भी नहीं। इस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त जब भी उनका मतलब देह छूटता है, तो देह छूटता तो एक बहाना ही होता है, वैसे तो उस देह में रहते हुए भी क्या है, वो मुक्त ही है। जैसे प्रभुपाद जी बताएं, जो भगवान की भक्ति कर रहा है वो पहले से मुक्त है, उनको बाद में अलग से जन्म मृत्यु जरा व्यधि के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने की कोई ज़रूरत भी नहीं, और वैसे मुक्ति तो उनके हाथ हाँ ऐसे खड़ी रहती है कि इसको स्वीकार कीजिए, मैं मुक्ति हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। लेकिन भक्त कहता है कि नहीं नहीं मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल क्या चाहता हूँ, केवल भक्ति चाहता हूँ, भगवान की कृपा या उनकी सेवा चाहता हूँ। तो इसलिए जो भक्त भगवान की सेवा में लग जाता है, तो भगवान की सेवा करने कारण उसको हर समय आनंद का, एक श्लोक भी आता है भागवत में, जब ब्रह्मा जी ने दर्शन किया भगवान का, तो उस समय का श्लोक है, मुखेन लोकार्ति हरस्मितेन परिस्पुरत कुंडल मंडितेन शोणायिते नाधर बिंब भासा प्रत्यहर प्रत्यर्हयंतम सुनसेन सुब्रवा। इसका अर्थ है कि भगवान का जो सुंदर मुख का दर्शन करता है, हंसते हुए मुख का, जैसे प्रभुपाद जी बताते ना, जो भगवान की भक्ति जीवन भर भक्त करता है, तो उसका भगवान को देखते ही एक ऐसा उसके जीवन में क्षण आता है या एक ऐसे समय आता है उसके जीवन में, जो भगवान की सेवा करते करते एक दिन भगवान उसको देखे क्या करते हैं, मंद मुस्कान, हाँ मुस्कान के साथ जब देखता है भक्त भगवान को, तो उसका जीवन क्या है, सफल हो गया, परिपूर्ण। यह वर्णन आता है कि जब भगवान के हंसते हुए चेहरे का दर्शन करता है, मुख का दर्शन करता है, तो क्या हो जाता है, उसके जीवन का जो दुख है, मुखेन लोकार्थी हरस्मितेन, हाँ आरती हर मतलब भगवान क्या करते हैं, दुख को नष्ट करने वाले हैं। और फिर जो भगवान का जो सुंदर मुख है, इतना आनंद देने वाला है, और इस आनंद के कारण बहुत सुंदर वर्णन किया है उस श्लोक में, भगवान की आंखें हैं, भव्य हैं, उनकी होठ है, उनका मुख कमल है, इतना सुंदर है, उस सुंदर मुख को देखते ही जो भगवान के भक्त है हर समय प्रसन्न रहते हैं। आप तो जो ब्रज में रहते हो हर समय, तो आपने देखा भी होगा कि जो प्रभुपाद जी के शिष्य या जो जिनका मतलब अंत समय नज़दीक आया, भगवान के धाम में प्रवेश करने का समय नज़दीक आया है, फिर भी हाँ बाहरी रूप से लगता है कि ये बूढ़े हो गए हैं, बीमार है, हाँ डॉक्टर बहुत प्रयास कर, डॉक्टर कहेंगे नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बाहरी रूप से सब लग रहा है हमको, लेकिन अंदर से वो भक्त तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके मुख से भी मुख देखेंगे आप तो मुख में क्या देखेंगे हम, बहुत ही प्रसन्न है। और जो भौतिक व्यक्ति है, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, जो हर समय जीवन भर भक्ति भी कभी नहीं की उसने, वो अगर मृत्यु का नाम सुनता है डर जाता है। जो भगवान का नाम नहीं लेता वो भी नाम लेने लगता है। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मुझे भगवान पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। एक साधु के पास गया कि साधु महाराज देखिए मुझे भगवान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। साधु महाराज ने कहा अच्छा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं आपका भविष्य जानता हूँ। अच्छा मेरा भविष्य जानते हो, बताइए क्या होने वाला है। कुछ ज़्यादा नहीं है, आपका कल दोपहर को 12 बजे आप मरने वाला हो, बस इतना ही। हाँ क्या, कल दोपहर को 12 बजे मैं मरने वाला हूँ, इतना सुना और भागते गया घर पे गया और क्या कहने लगा, राम 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 राम, इतने जोर से कंटिन्यू नॉन स्टॉप राम राम, इतना रटने लगा बस बोलने राम राम। घर वाले पूछ रहे क्या बात है बताओ सही, राम 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 राम। और उन दिनों में वो बड़ी घड़ी होती थी ना, सामने रख दिया और सोचा कि नहीं इसको भी नहीं देखूंगा, घड़ी ऐसे करके रख दिया। और दूसरे दिन 12 बज गए, 1 बजे, 2, 3, उसने देखा 3 बजे, समझ गया कि लगभग 12 तो नहीं बजे, अभी 12 से भी ज़्यादा हो गए, और समझे कि मेरे 12 बजने वाले थे 12 बजे, हाँ अभी 3 बजे क्या 12 बजेंगे मेरे। तो तुरंत गया साधु महाराज, ये क्या है, आपने जानबूझ के मुझे क्या किया, धोखा दिया है, आपने झूठ क्यों कहा मुझे कि मैं मरने वाला हूँ। साधु महाराज ने कहा कि धीरज से काम लो, देखो तुमने कहा कि भगवान पर तुम्हारा विश्वास नहीं, इसे कहा था याद है तुमको, हाँ बिल्कुल विश्वास नहीं, अच्छा और जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली 12 बजे, तो तुमने क्या किया? क्या किया मतलब क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे कुछ तो किया है जरूर, आप कुछ बोलते बोलने लगे। हाँ, बोलने लगा मैं, राम राम बोलने लगा। तो क्यों, विश्वास नहीं ना आपका? हाँ, विश्वास नहीं, अभी विश्वास हो गया है मुझे, अभी मुझे पता लगे कि भगवान है। लेकिन भगवान ही ऐसे व्यक्ति है जो हमें बचा सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अब दवा से काम नहीं चलेगा, दुआ से। इसलिए भगवान की प्रार्थना, भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति। किसी ने पूछा प्रभुपाद से, प्रभुपाद जी हम तो जीवन पर भक्ति कर रहे, लेकिन मृत्यु के समय हमने सुना है कि क्या हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, ये होता है, वो होता है, और भगवान का स्मरण करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे समय हम क्या करें? तो प्रभुपाद जी ने कहा, आपने जीवन भर अगर सच्चे दिल से अगर भक्ति की है, अगर फिर भी आप अगर भगवान को याद करने में समर्थ नहीं हुए, तो भगवान आपको याद करेंगे। देखिए, आप अगर भूल भी जाओगे कोई चिंता नहीं, भगवान आपका स्मरण करेंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त भगवान का स्मरण करता है, और भगवान भी क्या करते हैं, अपने शुद्ध भक्तों का स्मरण करते रहते हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छा टॉनिक प्रभुपाद जी ने दिया है हरिनाम का, तो उसको अगर लेते रहेंगे तो काल कन्या का और इन सैनिकों का जो पुरंजन पर आक्रमण है, हमला हो रहा है, हमले से हम हमेशा हमेशा के लिए बच सकते हैं। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है किसी, कुछ ना कुछ? ठीक है, ये भी रुकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्ण।